सो वेलकम यू टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रजत सोगानी से, और इन्होंने अपना इवेंट इंडस्ट्री में स्टार्टअप शुरू करा हुआ है। तो आप, मैं बुलाने वाला हूँ रजत जी को। रजत जी, कैसे हो आप?
बहुत बढ़िया।
सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपकी कंपनी के नाम से। तो आपकी कंपनी का नाम क्यों रखा, अगर उसके पीछे आप थोड़ा बताएंगे? हाँ
माई कंपनी नेम इज 7X वेडिंग, इट्स एन अमेरिकन नेम। सो जब भी कोई आदमी कंपनी खोलता है पहले ये सोचता है कि एक ऐसा नाम होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे। बट ये मेन स्ट्रेटेजी नहीं थी, स्ट्रेटेजी ये थी कि 7 इज माई लकी नंबर। अदर कंपनीज वर 7 इंक्स एंड 7 इंक्स बिजनेस कंसल्टिंग। सो एंड एक्स केम फ्रॉम माई पार्टनर्स कंपनी विच इज रनिंग फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। दैट्स अ बिग कंपनी इन कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट कॉल्ड एक्सपर्ट्स, इट्स XPERTZ। सो वी हैड लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग कि क्या खोले क्या खोले। तो मैंने मेरा 7 उठाया, उसका एक्स उठाया, तो 7X वेडिंग्स बनाया। बस कहते हैं ना, जब जो होना होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो फिर जब कंपनी बनी उस समय दिमाग लगाया नहीं कि जब वेडिंग कंपनी बनी उसके बाद यार 7 फेरे भी तो होते हैं। तो वो 7X ऑटोमेटिकली शूट हो गया। एंड दिस इज द स्मॉल स्टोरी ऑफ 7X। बट टू पीपल अलाइन टूगेदर, टू डिफरेंट कंपनीज, तो एक का 7 एक का X, एंड फाइनली हम लोग 7X तक पहुंचे। और 7X वेडिंग्स बाय देवराज मींस देवांग इज माई पार्टनर एंड रजत इज मी। सो इस इंडस्ट्री में क्या होता है, मोर ऑफ द कंपनी नेम पीपल नो बाय यू द फेसेस। सो 7X वेडिंग्स डिफाइन माय वेडिंग प्लानिंग एंड बाय देवराज मींस देवांग एंड रजत। सो इट्स अ 7X वेडिंग्स बाय देवराज।
तो आपने मेरे को बताया कि आपने कंपनी का नाम कैसे रखा, 7X वेडिंग, लेकिन ये आपने शुरू कब करी? उस टाइम आपको क्या पता था कि वेडिंग में इतना करियर है या नहीं है?
यार देखो, मेरा ना करियर चालू हुआ है 2004 में। मैं
हाँ
एक इंटरनेशनल कंपनी का बहुत बड़ा कंसल्टेंट रह चुका था
हाँ
और आई 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 रिजाइन देम फ्रॉम अ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी। सो वहां पे हम बड़े बड़े टेंडर्स भरते थे और जो तुम्हारे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के बड़े इवेंट होते थे वो मैं करता था। तो 2013 आई क्विट बिकॉज दे वर प्रमोटिंग मी एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो मेरे दिमाग में क्लियर था शुरू से कि मैं जिस दिन मैं डायरेक्टर बनूंगा मेरी खुद की कंपनी का बनूंगा। वो उस कंपनी शादियां नहीं करती थी बट बड़े लार्जर साइज इवेंट करती थी। 2013 में जब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला, यार मेरे बहन की मेरी सिस्टर की शादी है, कैन यू डू इट? आई सेड यार बड़े बड़े इवेंट करती है तो शादी क्या चीज है, कर देंगे। तो बट कोइंसिडेंटली उस शादी के टाइम पे जब वो शादी थी तो मेरा एनिवर्सरी होता था। तो मैंने कहा यार मैं उस टाइम पे नहीं हूँ लेकिन मैं अब्रॉड प्लान कर रहा हूँ ट्रैवल। तो मेरा एक फ्रेंड है देवांग, जो मेरे साथ मेरा कंप्यूटर हुआ करता था लेकिन हम दोस्त बन गए थे। मैंने कहा यार वो कर लेगा। बट हुआ कुछ ऐसा कि जो ऐसा हुआ कि मैं उस टाइम पे गया नहीं और हम दोनों ने मिलकर ये शादी एग्जीक्यूट करी 2013। तो कहते हैं ना, जब विधि का विधान होता है तो वो होता है। तो जब हमने शादी एग्जीक्यूट की तो हमें बहुत मजा आया, हमें लगा यार ये बहुत अच्छा बिजनेस है। एंड द क्लाइंट अप्रिशिएटेड अलॉट। अलॉट मींस जिस क्लाइंट, जो दोस्त की शादी की सिस्टर की, उसके पापा ने पहले 4 शादियां कर चुके थे और उन्होंने बड़े बड़े वेडिंग प्लानर से करवाई हुई थी। तो दे मोटिवेटेड मी कि नहीं रजत, यू आर वेरी डिफरेंट एंड यू आर वेरी गुड। सो द स्टाइल ऑफ डूइंग दिस इज वेरी गुड। तो फिर एक आध दो रेफरेंस चलते गए और कारवां बढ़ता गया और आज 10 साल हो गए पूरे। और 10 साल में हमने कुछ 250+ वेडिंग कर दी है और मजा आने लगा और बिजनेस एक्चुअली बहुत ग्रो हो गया।
अच्छा, आपने अभी दो चीजें बोली। जैसे पहला तो रजत, सॉरी, जो आपका पार्टनर है वो आपका कॉम्पिटिटर था और अब वो आपका
हाँ,
पार्टनर हो गया।
पुराने बिजनेस में कंप्यूटर था, कुछ ऐसा कंप्यूटर था कि हम दोनों टेंडर भरते थे कुछ
अच्छा
कुछ जगह पे। तो
हाँ
अगर वो मुझे दिख जाता था टेंडर में तो मेरा लकी चांस था वो, कि वो टेंडर
अच्छा
मुझे मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह का
अच्छा
सिचुएशन था। लेकिन फिर
हाँ
जैसे आप बड़े होते हो तो यू नो योर राइवल्स बिकम योर फ्रेंड्स, देन यू
हाँ
स्ट्रेटेजाइज, फिर मिलके टेंडर बढ़ जाते हैं कि ये वाला तू उठा लेना, ये वाला मैं कर लूंगा। तो
हाँ
ऑटोमेटिकली अच्छी दोस्ती हो गई। एंड ठीक था, उसने एक आध दो शादियां पहले की हुई थी तो उसको एक्सपीरियंस था, तो मेरे को लगा ये करेगा तो वोट पे ले आते हैं। लेकिन फिर ठीक है, हुआ, अच्छे से चालू हुआ।
नहीं, ये तो आपकी स्ट्रेटेजी मेरे को भी बहुत बढ़िया लगी कि आपने अपने कॉम्पिटिटर को बोला तू ही पार्टनर बन जा, अब तो
टेंशन
टेंशन ही खत्म।
ही खत्म हो जाती है।
सही
सही
बात
बोल रहे हो आप।
है। अच्छा, और दूसरी चीज आपने मेरे को बोली कि आपने एक, अभी आप एक नंबर बता रहे थे, आपने उतने नंबर शादियां कंप्लीट करी, वो नंबर क्या था?
250+ वेडिंग्स,
215।
50, 250+,
ओ, 250
250 से
प्लस
ज्यादा
वेडिंग।
शादियां कर दी है।
ओके, तो आपने इतनी 250 शादियां करी हैं, उनमें से कोई ऐसी ब्राइड है जो आपको आज भी याद रहती है, अरे वो ब्राइड ऐसी थी?
देखो सारी ब्राइड याद रहती है।
हाँ,
ये शादियों का जो बिजनेस है ना, ये बड़ा पर्सनलाइज बिजनेस है।
ये तो है।
तो इसमें मैं कित्तों का तो भैया बन गया हूँ, कित्तों का मैं अंकल बन गया हूँ, कित्तों का मैं मामा बन गया हूँ, कितनों का मैं चाचा बन गया हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। मतलब हर कोई भाभी होती है, हर कोई बहन बन जाती है। तो अगर दूल्हे की 3 बहनें हैं तो 3 दीदियां हो जाती है, 3 जीजा है तो मैं भी जीजा ही बोलता हूँ उनको। बट हाँ, कुछ कुछ ब्राइड्स ऐसी आती है जो आपको एक्साइट भी करती है कि हाँ यार कुछ अलग करना है, और कुछ ऐसी होती है जो बहुत परेशान भी करती है, बोले यार जान ले ली लड़की ले। एवरी लेकिन मोस्ट ऑफ द गुड वेडिंग्स हैव अ यूनिक स्टोरी बिहाइंड इट। तो कुछ शादियां तो ऐसी है, कुछ ब्राइड्स तो ऐसी है कि वो मतलब अपने फोटोशूट के लिए इतनी पागल थी कि उसको शादी से ज्यादा फोटोशूट पे प्यार था। तो अल्टीमेटली वो आज मेरी मतलब मुंह बोली बहनी बन गई है। मतलब उसने मेरी इतनी जान खाई कि शादी से पहले मेरी फोटो यहाँ आनी चाहिए, ऐसी आनी चाहिए, वैसी आनी चाहिए। एक ऐसी आई थी कि उसको दुनिया का अलग ही डेकोर चाहिए था। मतलब उसने हमको इतना नचाया, इतना इतना हार्ड वर्क करवाया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, मुझे कुछ अलग 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 के चक्कर में बहुत कुछ अलग किया। एंड देन इट्स अ जॉइंट थिंग, इट बिकेम वेरी गुड एंड वी डिड अ गुड जॉब। एक ऐसी आई थी कि खुद डिजाइनर थी, शी वाज अ वेरी वेल नोन डिजाइनर, आई वोंट नेम हर बट शी वाज अ वेरी वेल नोन डिजाइनर। तो वो अब डिजाइनर का फंडा क्या होता है कि वो हर जैसे कपड़ा डिजाइन करता है तो वो आपको एक बार कच्चा दिखाता है पहन के। तो शी एक्सपेक्टेड कि हम जो डेकोर करेंगे उसका एक सैंपल भी बना के दिखाएंगे। तो वो बड़ा टफ था कि बोले यार ऐसे कैसे नहीं होता, हम तो दिखाते, तो मतलब ठीक है लेकिन बहुत फन। तो हर हर शादी की एक यूनिक स्टोरी होती है। तो आप अगर मुझे 250 शादी पूछोगे तो मैं आपको 250 शादी की 250 यूनिक स्टोरी बता सकता हूँ,
नहीं
कुछ
फिर
ना कुछ तो होता
पॉडकास्ट
ही है।
काफी लंबा हो जाएगा, तो अगर आप एक
हाँ
कुछ
तो
बता रहे हैं
वो
तो आप।
ब्राइड तो नहीं, ब्राइड की मदर थी
हाँ
जो
हाँ
जिनका नाम पटेल है। तो वो मेरे ऑफिस आई और मुझे मतलब पर्टिकुलरनेस की भी गॉड मदर बोल सकते हो आप। उनको ये भी जानना था कि फॉर एग्जाम्पल अगर खाने में सूप सर्व हो रहा है तो सूप की प्लेट के अंदर क्या स्टार्टर रखा जाएगा और किस तरह रखा जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट कि
या
आप सूप
प्रॉपर
ले रहे हो
डीप
बाउल में तो सूप
डिटेलिंग।
डिटेलिंग, अगर आप चेयर पे बैठे हो तो चेयर पे बो जो लगेगा बो में से 2 लीफ नीचे आएगी कि सिंगल लीफ आएगी। दैट काइंड ऑफ डिटेलिंग शी वांटेड एंड वी डिलीवर ऑन दैट लेवल। मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कि किस तरह का फ्लावर होगा, कहाँ लगेगा, किस तरह सेटअप होगा, क्या विजुलाइज होगा, चेयर्स कितनी होगी, किस शेप में होगी, एवरीथिंग वाज मेटिकुलसली प्लान्ड। सो दैट वाज टू गुड। एंड द सेकंड ब्राइड वाज, अभी रिसेंटली हमने एक रामबाग में शादी करी। तो नाउ शी कॉल मी चाचू नाउ आफ्टर द वेडिंग, अंकल शी कॉल मी अंकल नाउ। तो शी वॉज वेरी क्लियर कि उसको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, उसको सेटअप कैसा चाहिए, एक एक डिटेलिंग डिटेलिंग टू अ लेवल कि फर्नीचर, हर शादी का फर्नीचर, हर इवेंट का फर्नीचर कैसा होगा, उसकी एंट्री कैसे होगी, उसकी उसकी लाइटिंग कैसे होगी। तो ये भी प्लान किया। तो इट इज अ वेरी डिटेल्ड वर्क एंड याद रहता है, कुछ ना कुछ यूनिक स्टोरी होती है। पर
नहीं
परेशान कभी नहीं होते, उस समय लगता है कि यार बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बट जब रिजल्ट आता है ना तो इट गिव्स यू लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, एवरी हार्ड वर्क पेज ऑफ।
नहीं ये वाला तो जेन्युइनली बहुत यूनिक था, और इतनी ज्यादा डिटेलिंग अगर वो देख रहे हैं तो भाई मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे एक थोड़े बहुत क्लाइंट मेरे को भी।
मतलब वेटर अगर स्टार्टर सर्व कर रहा है तो उस वेटर की प्लेट में 11 स्टार्टर से ऊपर नहीं आ सकते हैं क्योंकि उसकी जगह उतनी है। तो वो किस तरह रखे जाएंगे, उसके ऊपर प्रॉप क्या होगा, इतनी डिटेलिंग करी थी हम लोगों
मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने खुद देखी हैं और आई कैन वेरी मच रिलेट दैट। अच्छा जैसे अभी आपने बताया कि आपने 250 शादीज करी हैं, 10 साल काम करा है, तो इसके अंदर मतलब आपने इंटरनेशनल भी करा है या सिर्फ इंडिया इंडिया में करा है?
ने, इंटरनेशनल भी करा है। मोर देन 15+ वेडिंग इंटरनेशनल करी है
ओ
हमने।
तो इंटरनेशनल में क्या करा है थोड़ा आप बताओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वेडिंग
अभी
बनना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि हम भी जाएं, ट्रिप होगा, ऐसा कुछ होगा।
देखो यार, इंटरनेशनल शादी एक्साइट तो बहुत करती है लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल शादियां करना बहुत डिफिकल्ट एस्पेक्ट होता है। लगता बहुत आसान है कि इंटरनेशनल शादी से, अभी रिसेंटली हमने फरवरी में वियतनाम में शादी करी। तो वी वर द सेकेंड इंडियंस टू डू अ वेडिंग इन वियतनाम विच हैड मोर देन 400 से ज्यादा लोग थे। क्या होता है जब आप एब्रॉड शादी करने जाते हो ना, तो इंडिया में तो क्या होता है कि इंडिया में जब आप एक शादी करते हो तो 50-60 लोग आपकी टीम में आ जाते हैं। ठीक है, 40-50 लोग, 50-60 लोग होते हैं। आप बाहर की लेबर भी हायर कर लेते हो, बहुत चीजें हायर कर लेते हो। बट जब आप एब्रॉड जाते हो तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल लेके जाते हो। क्लाइंट के लिए हर चीज का कॉस्ट होता है। एक आदमी का ट्रेवल करने का कॉस्ट 50,000-60,000 लाख रुपए का आता है, डिपेंड ऑन द कंट्री टू कंट्री। तो वहां पे आपको लिमिटेड नंबर में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए होता है। तो आप मतलब अपने अपने पोटेंशियल से डबल काम करते हो। ठीक है, क्योंकि करना पड़ता है। प्लस आप जैसे वियतनाम जाओ तो वियतनाम में लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है, खाना बहुत बड़ा बैरियर है। तो वहां पे कमरे तो सस्ते मिल जाते हैं, वेन्यू सस्ते मिल जाते हैं, पर खाना यहाँ से लेके जाना और सब कुछ करना, तो इट इज डिफिकल्ट। एनी इंटरनेशनल वेडिंग कम विद देयर ओन स्वीट चैलेंजेस। ठीक है, हर कंट्री का अपना अलग चैलेंज होता है। जैसे दुबई का चैलेंज कॉस्ट कटिंग होता है, कॉस्ट बहुत महंगा आता है दुबई के अंदर। ठीक है, लंदन करते हैं तो यहाँ का टिकटिंग और वीजा इज अ मेजर इशू। ठीक है, एंड वेन यू गो टू वियतनाम, वियतनाम में लैंग्वेज इज अ बिग बैरियर, फूड इज अ डिफिकल्ट टास्क. तो इंटरनेशनल इज वेरी गुड ऑलवेज, बट इंटरनेशनल मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि इंटरनेशनल कभी पीक डेट्स पे नहीं करना चाहिए. इंटरनेशनल शादी करना चाहिए तो आपको या तो सीजन के बिगनिंग में कर लेना चाहिए या सीजन के एंड में करना चाहिए. क्योंकि तो एक इंटरनेशनल शादी करने के लिए आपको, फॉर एग्जाम्पल, अगर 4, 5, 6 दिसंबर की शादी है तो आप 1, 2, 3 भी इंडिया में कर सकते हो, 7, 8, 9 भी इंडिया में कर सकते हो. बट अगर आप एब्रॉड में 4, 5, 6 कर रहे हो तो आपको 5 दिन पहले ट्रेवल करना पड़ेगा और 3 दिन पहले बाद में आते हो, तो आपका पूरा 10 डेज का फ्लैग खराब हो जाता है. ठीक है? तो एज अ इफ इफ प्लानर्स आर लिसनिंग, देन आई ऑलवेज एडवाइज कि इंटरनेशनल जब शादी करते हो तो उस शादी को खाली 3 दिन की शादी मत मान के चलना. वो शादी कम से कम 9 दिन की होती है, 5 दिन पहले, 3 दिन वेडिंग के और 1 दिन बाद. उसके बिना वो शादी प्लान नहीं हो सकती. तो अगर आप 9 दिन दे सकते हो एक शादी को तो इंटरनेशनल शादी उठाओ, और डबल वर्क कर सकते हो अपने पोटेंशियल तो शादी उठाओ.
तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि अगर इंटरनेशनल वेडिंग करनी है तो ये पॉइंटर्स हैं, इनको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, आपने कोई शादी में कभी ऐसा देखा कि जो इंटरनेशनल भी हो और उसमें कोई गड़बड़ हो गई हो और फिर आपने उसको हैंडल आउट करके सॉल्व कराओ?
इंटरनेशनल में तो नहीं हुआ था, अभी नेशनल में हुआ
हाँ।
था. वो गड़बड़ ऐसा हुआ था कि इट इज द बिगेस्ट क्राइसिस इन द हिस्ट्री ऑफ वेडिंग प्लानिंग. व्हेन आई से द हिस्ट्री ऑफ वेडिंग प्लान अक्रॉस द ग्लोब, इट वाज द बिगेस्ट क्राइसिस हैपेंड,
हाँ।
एंड वी फेस्ड इट एंड वी टैकल इट वेरी स्मार्टली. स्मार्टली तो क्या बोल सकता हूँ, लेकिन अच्छे से किया. ये बात है 6 जुलाई की, 2017 या 2018 की बात है. तो देयर वाज अ बिग फैट वेडिंग हैपनिंग एट उम्मेद भवन जोधपुर. ये आप कभी भी गूगल करोगे तो बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ वेडिंग इंडस्ट्री, उसमें सबसे पहले मेरा ही नाम आएगा और इस स्टोरी के बारे में आएगा. तो
अच्छा।
ये बात है कि देखो क्राइसिस क्या होता है, आर्टिस्ट
हाँ
नहीं आया, लाइट बंद हो गई, लाइट
हाँ हाँ
छूट गई, खाना खत्म हो गया, ये क्राइसिस होते हैं. ठीक है? टेक्निकल कोई चीज चालू होनी थी वो नहीं हुई, ये सब
हाँ हाँ
क्राइसिस होते हैं. कि 1,000 आदमी बुलाए थे, 1,500 आ गए. ठीक
हाँ 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 हाँ
है? आर्टिस्ट टाइम पे नहीं पहुंचा.
हाँ हाँ
ठीक है? तो ये क्राइसिस होते हैं. बट ये क्राइसिस जो मैं बता रहा हूँ वो क्राइसिस क्या था, 6 जुलाई की शादी थी, 4 जुलाई को उम्मेद भवन में चेक इन था. जब आप जोधपुर शादी करने जाते हो तो उम्मेद भवन के लिए करने जाते हो, इट्स अ बिग फैट प्लेस. तो जब मैं उम्मेद भवन की शादी की बात करूँ तो बिग फैट वेडिंग ही होगी. तो जोधपुर में उम्मेद भवन बुक था, ITC बुक था, और ताज हरी महल बुक था. बिग फैट वेडिंग, अप्रोक्स 300-400 लोग ट्रैवल करने थे. सारे फंक्शन जो है ना, शादी उम्मीद भवन में थी, संगीत उम्मीद भवन के बाहर था, और मेन जो बारात है वो उम्मीद भवन में चेक इन हो रही थी. उसका इतना बड़ा प्रोडक्शन था पीयूष कि उसके लॉन में हम AC लगा रहे थे, ओपन टू स्काई, ताकि
अच्छा।
टेम्परेचर कंट्रोल कर सकें, और वाटर बॉडी बनाई थी. शादी 6 तारीख की थी, प्रोडक्शन 29th से चालू हो गया था. इमेजिन करो किस लेवल का प्रोडक्शन होगा. मेरे को आज भी याद है, मैं पहुंच गया था 30 तारीख को, तो 2 तारीख की शाम को मैं उम्मीद भवन में खड़ा था कोर्टयार्ड में, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि वाओ, इतना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है और सब कुछ होना है. तो मैं 5 मिनट के लिए मैंने कहा, यार अब ताज मेरे को एक काम था, दूसरे हरी महल में काम, तो मैं जाके आता हूँ. तो जब मैं ताज हरी महल गया तो मेरे का फोन आया, जनरल मैनेजर का, रजत वे आर यू? मैं बैठा, मैं आपसे मिलने आता हूँ. मैं, क्या हुआ? वो आके मुझे बोलती है, रजत एक प्रॉब्लम हो गया. मैंने क्या प्रॉब्लम हो गया? बोले राजा जी की मदर एक्सपायर हो गई. तो मैंने कहा, यार मतलब आई प्रे फॉर हर? तो बोलते नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, तो प्रॉब्लम ये है कि अब आप उम्मीद भवन में शादी नहीं कर सकते. मैंने
ओ
कहा, आपका दिमाग खराब हुआ है?
हाँ
आज शाम के 6 बज रहे हैं, परसों सुबह बारात आनी है, शाम को सोनू निगम नाचने वाला है, परफॉर्म करने वाला है, और मुझे आप आज बोलते हो कि मैं परसों सुबह चेक इन नहीं करा सकता,
हाँ
शादी नहीं कर सकता? तो इमेजिन द लेवल ऑफ क्राइसिस इट इज. बोले
ओ
क्योंकि जिस हॉल में आप फंक्शन करने वाले हो उस हॉल में डेड बॉडी रखेंगे.
ओ
क्योंकि राजमाता इज ए पब्लिक फिगर, तो
हाँ
बोले वहां पे दर्शनार्थ के लिए डेड बॉडी रखेंगे. अब आप सोचो, आप टॉप पे थे, अब जीरो पे खड़े हो. 6 महीने से शादी प्लान हो रही है, डेकोर प्लान हो रहा है, प्रोडक्शन प्लान हो रहा है,
ओ
और
शिट
अब आप सोच के देखो आप कहाँ जाके लैंड अप करोगे. शाम को 7 बजे की बात है, परसों सुबह चेक इन होना है. पीयूष, मैंने मेरे क्लाइंट को फोन किया, तो मेरा क्लाइंट इतना बड़ा था और इतना, जिसे बोलते हैं, इतने बढ़िया सज्जन लोग थे. उन्होंने एक ही चीज बोली, रजत हम तो बारात लेके आ रहे हैं, तू जान तेरा काम जाना है, और फोन रख दिया. मैंने 48 घंटे के अंदर, मतलब दैट आई वेंट टू सी द न्यू प्लेस, आई बुक द न्यू प्लेस, रातों रात पूरा प्रोडक्शन खुलवाया, उठवाया, मंगवाया, उम्मीद भवन वाले जो कमरे थे वो दूसरे होटल में बुक किए गए, सब कुछ हुआ. 4 तारीख की सुबह बारात आई, शादी, वेन्यू चेंज हुआ खाली. लेकिन हुआ सब कुछ जो होना था, सब रातों रात स्टेशनरी या प्रिंट हुई। मैं ये बोलता हूँ पीयूष, 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक मेरी टीम 1 मिनट नहीं सोई। एंड इन द एंड क्लाइंट सेड दैट यू आर अ मैजिशियन, यू कुड हैव ओनली डन इट एज नो बडी वुड हैव डन इट। महीना जुलाई का था, 25,000 स्क्वायर फीट का डोम बनना था जो बन चुका था, एयर कंडीशन डोम। 3 दिन में हमने 25,000 स्क्वायर फीट डोम खड़ा किया, एयर कंडीशन किया, सब कुछ किया। मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ हुआ। तो ये क्राइसिस ऐसा था कि ये हिस्ट्री में लिखा गया। और लोगों ने, जब मैं कई बार मैं सेशन लेने जाता हूँ या मैं स्पीकर बनता हूँ, तो लोग मुझसे हमेशा इस बारे में पूछते हैं कि आप बताओ एक्चुअली हुआ क्या था और आपने क्या फील किया था। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा फील किया था कि ये तो एक सुसाइडल से भी ज्यादा बड़ा अटेम्प्ट हो गया था। मेरे मुंह से निकल गया, मरी तो राजमाता है, हमको लेके डूब गई, हमको मार के चली गई। अब आई कांट एक्सप्लेन यू कि उस समय क्या हुआ होगा। आप इमेजिन करो, परसों सुबह आपके साथ शादी होनी है और आपको पता लगा आपके पास वेन्यू ही नहीं है, और 300 टॉप नॉच पीपल ऑफ द कंट्री आर कमिंग। चार तो प्राइवेट चार्टर आने थे, उसी लेवल के होटल पे जाना, तो मतलब ये बहुत टफ टास्क था। एंड वी डिड इट। सो दिस इज द बिगेस्ट क्राइसिस वी टैकल्ड। और अभी एक वियतनाम में क्राइसिस हुआ। वियतनाम में क्या हुआ कि केटर बुक किया क्लाइंट ने, हमने बुक किया, तो क्लाइंट ने क्या बोला, सब सामान हमने यहाँ अरेंज कर दिया है फूड का। तो 20 की शादी थी, तो 14 को सारी ग्रोसरी जो भी होता है अपना इंडियन सामान आपको मिल जाएगा।
अच्छा
तो बोले ओके डन। तो वो क्लाइंट के किसी रिलेटिव ने वियतनाम में बोल दिया कि मैं अरेंज कर दूँ। ओके ओके, हम पहुंच गए, तो भाई साहब ने फोन ही नहीं उठाया।
ओ
भाई साहब अब आप सोचो, आप अब्रॉड में बैठे हो और 400 आदमी आ रहा है, उनका 4 टाइम के खाने में ना आपके पास आटा, ना दाल, ना मिर्ची, ना धनिया, ना कुछ भी नहीं था। और सेटिंग इन अब्रॉड, यू टू अरेंज ऑल दीज थिंग्स। तो आई स्टिल नो हाउ आई हैव डन इट। इन 3 डेज हमने 7,500 kg सामान यहाँ से 80 लोगों के साथ पार्सल कर करके भेजा है फ्लाइटों में। तो ये भी एक क्राइसिस था। तो एक छोटे मोटे क्राइसिस भी होते हैं, बड़े क्राइसिस होते हैं, बट ठीक है। जोधपुर वॉज द बिगेस्ट वन एंड वी
नहीं,
हैंडल्ड इट।
जेन्युइनली जेन्युइनली आज तक मैंने जितने पॉडकास्ट लिए हैं उसमें जो ये मेरे को सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज जो दिखा वो ये वाला दिखा है। क्योंकि भाई मैं एक बार इमेजिन करके देख रहा हूँ कि मेरा एक सपना मैं बना रहा था, सपना बनाने में मैं पूरा जी जान पैसा सब कुछ
सब
इन्वेस्ट कर दिया है।
कुछ यार, चार
और
तारीख की उम्मीद भवन में क्या होता है, 4 तारीख की सुबह है ना, आप समझो 4 तारीख की सुबह आप उस गांव में काम नहीं कर सकते हो।
और
ठीक है,
एक बार में कोई आया और सारे सपने में पानी फेर गया। ओ शिट।
खाता मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने देवांग को फोन किया, मेरे पार्टनर को, ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम उदयपुर टू अहमदाबाद, ही वाज नॉट देयर दैट टाइम, बिकॉज़ ही वाज हैडिंग अ डिफरेंट वेडिंग। तो मैंने कहा तू कहाँ है, बोले मैं उदयपुर से अहमदाबाद। मैंने गाड़ी जोधपुर मोड़, बोले पागल है क्या हो गया। तो मैंने कहा तू बस गाड़ी मोड़, बोले मेरे पास कपड़े नहीं। मैंने कहा मैंने कपड़े के लिए एक आदमी तेरे घर भेज दिया, वो घर से लेके निकलेगा। उसको मैंने बताया ये सिचुएशन है, तो बोला तू रुक, तू घबराना मत, हम हैंडल कर लेंगे। वो उदयपुर से जोधपुर 2 घंटे में पहुंच गया। यू नो इट वाज द बिगेस्ट क्राइसिस यू कैन
नहीं सही
इमेजिन। यार आपके पास कुछ भी नहीं है,
बात
कुछ
है।
भी नहीं है, आपको पता नहीं है आपको परसों का इवेंट क्या होगा, सोनू निगम कौन से स्टेज पे खड़ा होकर नाचेगा, ये पता ही नहीं है आपको। तो ये सब चीजें हो जाती है, लेकिन ठीक है, दिस थिंग्स मेक यू लॉट ऑफ दिस थिंग टीचेस यू अ लॉट।
बिल्कुल ये वाली बात सुन के ना मैं 2 मिनट थोड़ा वो भी हो गया कि भाई इतना बड़ा आपने वो चैलेंज हैंडल करा है ना, तो सीरियसली ये तो बहुत ज्यादा
वही तो बोल
बड़ा।
रहा हूँ, इफ यू गूगल इट, इफ यू गूगल इट इज द बिगेस्ट क्राइसिस इन द इवेंट इंडस्ट्री।
नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जिस स्मार्टनेस के साथ इसको करा कि ठीक है भाई दूसरी जगह देखते हैं, दूसरी जगह बुक करते हैं, और वो सब आपने करा ना, ये चीज भाई बहुत बढ़िया है भाई। मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर मैं भी होता ना, मैं अगली बार अगर जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है इवन वो समझ जाएगा भाई इतना बड़ा चैलेंज अगर आपने हैंडल कर लिया। तो हमारे तो फिर नॉर्मल होते, चल छोटा मोटा इधर उधर से। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, तो अगर आपने ये ड्यूरिंग द आपने 10 साल की जो जर्नी रही है, तो इसमें आपने क्या क्या मेन अचीव करा? क्योंकि ये चैलेंज और इससे मिलने वाली खुशी तो है, लेकिन इसके अलावा आपने क्या क्या अचीव करा?
देखो मैंने ना एक चीज अचीव करी कि ये इंडस्ट्री थोड़ी अनसिस्टमैटिक थी। ठीक है, यहाँ बातें ज्यादा होती थी और काम काम होता था। तो वी एज ए प्लानर, माय अभी मेरे कॉर्पोरेट, मेरा मेरा जो बैकग्राउंड था वो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड था। मैंने 8 साल जॉब किया, मैं अच्छी पोजीशन पे पहुंचा। तो उसका मैंने एडवांटेज ये उठाया कि मैंने इस इंडस्ट्री में अपने आप को सिस्टमेटिक बनाया और लोगों को ये सिखाया, जो प्लान जो जो भी क्लाइंट थे उनको एक डिफरेंटिएशन बताया कि बॉस कोई भी चीज हवा में नहीं होती, इफ यू हैव अ प्लान इट हैज टू बी ऑन द कंक्रीट ऑन द पेपर, तो जो भी बात करो पहले पेपर पे बात करो, हवा में ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा वो नहीं। दूसरी चीज मैंने अचीव करा, मैंने लोगों को सपने देखना सिखाया। पहले क्या होता था कि आप जो कर जो प्लानर कर देता था वो हो जाता था, नहीं मैंने क्या बोला, तुम जब मैं किसी क्लाइंट से मिलता हूँ तो बोलता हूँ तुम्हारा सपना क्या है, तुम मुझे वो बताओ मैं वो पूरा करूंगा। मैंने लोगों को जो जो मेरे पास आते हैं कि नहीं यार रजत हमने ये सोचा कुछ ऐसा कर पाओगे, वो सपना मैंने पूरा अचीव किया है। सेकंड, मैंने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है इंडस्ट्री को सिस्टमैटिक बनाने में, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे कंट्रीब्यूशन से इंडस्ट्री में कुछ नया बदलाव आया, लोगों ने ब्राइट ग्रूम में सपना देखना चालू किया और सपने अचीव होने चालू किए। दैट्स द थिंग व्हिच आई एम ऑलवेज हैप्पी। और यूथ को ये सिखाया कि बहुत वेडिंग प्लानर बनना बहुत आसान है, कुछ निभाना बहुत मुश्किल है। आज मेरे साथ ऑलमोस्ट मेरे आई एम द ओनली कंपनी इन द कंट्री विच इज वेरी टॉप टू और थ्री कंपनी विच हैव 45 पीपल ऑन द पेरोल, सो आई हैव 45 पीपल ऑन द स्टाफ वर्किंग फॉर मी। सो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, कोई भी चीज आदमियों से होता है, इट्स नॉट कि वेडिंग प्लानर बनना तो बहुत आसान है, आप एक लैपटॉप लाओ एक जाके मीटिंग करो, करना क्या है आपको, डेकोरेशन वाला डेकोरेशन करेगा, केटरिंग वाला केटरिंग करेगा, नहीं, बट यू हैव टू प्लान, यू हैव टू सी एंड एग्जीक्यूट, एवरीथिंग इज वेरी पर्टिकुलर। सो यूथ को मैं ये बोलता हूँ कि पेशेंसफुली काम करो, हर चीज बढ़िया हो जाएगी, ये सिखाया लोगों को।
नहीं, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोली है। और अगर आपके पास 45 ऑन पे रोल मेंबर है अभी तक, आई थिंक आपके पास सबसे हाईएस्ट है जितनों के साथ अभी मैंने पॉडकास्ट किया, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। और अगर जैसे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो आने वाले टाइम में वेडिंग प्लानर बनना चाहते हैं, इवेंट प्लानर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी स्किल्स आपके अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड होनी चाहिए?
सबसे पहले स्किल होती है आपकी बोलने की, यू हैव टू बी यू नो यू हैव टू बी गुड स्पीकर, यू हैव टू यू यू कांट बी अ प्लानर इफ यू कांट स्पीक एंड यू कांट स्पीक अबाउट योर थॉट अबाउट योर प्रोसेस। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न, सेकंड यू हैव टू वर्क ऑन डिटेलिंग। इट्स नॉट अ बिजनेस ऑफ ब्रोकर और कमीशन एजेंट कि आपने एक शादी उठाई डेकोरेटर को डेकोरेटर कर दे दिया उसका कमीशन खा लिया क्वेटर को, नो, आपको टेक्निकली डिटेलिंग पता होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। इफ यू डोंट वांट टू लर्न डिटेलिंग, इफ यू डोंट वांट टू गो इन डीप इन डिटेलिंग, देन डोंट डू दिस बिजनेस। हो सकता है सीजन अच्छा चलो दो चार शादियां कर लोगे, लेकिन ये करियर नहीं बन सकता क्योंकि ये काम बहुत डिटेलिंग का है डियर। डिटेलिंग किसे बोलते हैं कि जब दिन चल रहा हो तो सबको अच्छा होता है, जब दिन खराब होता है ना तो सब चीज फॉल बैक होती है, ठीक है। तो अगर मैं उस दिन जोधपुर में अगर मेरी डिटेल स्ट्रांग नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। मुझे पता था कि कौन से मोमेंट से क्या 48 घंटे में मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, तो मैंने मेरा टाइम वही वेस्ट किया जो मैं कर सकता था। कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं नहीं कर सकता था तो मैं उसकी डिटेलिंग में गया भी नहीं। तो डिटेलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, पेशेंस, पेशेंस एंड विजन। यू हैव टू कीप लॉट ऑफ पेशेंस इन थॉट, यू हैव टू लिसन टू द पीपल एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंसफुल। फोर्थ इज आई से यू हैव टू बी लिटिल डोमिनेटिंग, आई कांट से बट यू हैव टू बी लिटिल क्लियर अबाउट योर थॉट कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ यार, क्लाइंट मांग रहा है और वो तुम दे दोगे ऐसा नहीं होता। द एंड नंबर ऑफ टाइम द सिचुएशन कम द क्लाइंट डिमांड लॉट ऑफ थिंग विच वी से नो डोंट डू दिस इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स द वे इट हैज टू बी हैंडल्ड। आज अगर क्लाइंट बोलेगा कि तुम मुझे इसमें क्रेन उतार दो, मत उतारो, सी टेक्निकल पार्ट ऑफ इट, इफ यू आर नॉट कन्विंस विद दैट से नो, स्टार्ट सेइंग नो। हम सर्विस इंडस्ट्री में तो हमें क्या लगता है कि हम सब चीज में हाँ बोलेंगे तो क्लाइंट को अच्छा लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप ना ही नहीं बोलोगे और वहां पे कुछ गलती हो गया तो कोई सुनता नहीं कि तुमने हाँ क्यों बोला था, तुम जाके ये नहीं बोलते थे कि आपने मांगा था तो मैंने दिया। आप एक कंसल्टेंट बन रहे हो, आप एक प्लानर बन रहे हो, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको एडवाइस करो क्या सही है और क्या गलत है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको समझ में आना चाहिए कि वो जो करवा रहे हैं आपसे वो ठीक है या नहीं है, या जो आप कर रहे हो वो ठीक है या नहीं है। ये ग्रेजुअल एक्सपीरियंस के साथ भी आता है, लेकिन जिस चीज के लिए आप कन्विंस नहीं हो उसके लिए कभी हाँ मत करना।
बहुत बढ़िया कि मतलब अंदर दिल से आना
दैट्स द
चाहिए ये
लेसन फॉर द
चीज
यूथ।
सही है, और टेक्निकली
हाँ ये
भी।
कर सकते हैं यार।
हाँ
हाँ लॉट ऑफ टाइम ब्राइड कम्स टू मी कि मैं ऊपर हवा से आना है, मैं एक्रोबेट करती हूँ, ठीक है आ जा, तो पहले को 4 पॉइंट बताओ कि ये चीजें हो सकती है, आर यू
हाँ
रेडी, उनकी फैमिली को बताओ। मजाक मजाक में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आप खत्म हो गए, बिकॉज फिर कोई बोलने नहीं आएगा आपको कि आपने सब क्या बोलेंगे, आप दुल्हन की सुनी क्यों थी, आपके पास दिमाग नहीं था क्या। तो ये सब चीजें होती है। वेडिंग प्लानिंग इज अ बिजनेस ऑफ पैशन, इफ यू डोंट हैव अ पैशन डोंट टेक इट एज अ बिजनेस, टेक इट एज अ पैशन। एनी यूथ हु थिंक कि इसमें पैसा है मुझे बिजनेस करना चाहिए, मत करना, पैसा जब आता है जब पैशन होता है। ठीक है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट टू इच अदर। अगर आप पैशनेट नहीं हो रात भर जगने के लिए, आप पैशनेट नहीं हो हार्डवर्क करने के लिए, लोगों को हमारी लाइफ बहुत ग्लैमरस लगती है कि हम सेलिब्रिटी से मिलते हैं, हम रोज इतना बड़ा होटलों में रुकते हैं, 5 स्टार में रुकते हैं। नहीं, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये होती है कि जब 5 दिन शादी होती है तो हमारी एवरेज स्लीप 2 घंटे की होती है। हमारा चेहरा ग्लो करना चाहिए, हम हस्ते दिखने चाहिए। आप 24 घंटे में अगर 1 घंटा सो रहे हो, या 5 दिन में हम 3 घंटा सो रहे हो, 6 घंटे सो रहे हो, अगर हार्ड वर्क कर सकते हो और पैशनेट हो तो ही इस लाइन में आना, तो ही ये काम करना। सो आई ऑलवेज से टू यू, बी पैशनेट टूवर्ड्स वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ एंड इंजॉय दैट बिजनेस, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल।
राइट, आपने तो भाई मजा कर दिया, मतलब ये वाला पॉडकास्ट तो अमेजिंग है। सो थैंक यू सो मच।
थैंक यू पीयूष, थैंक यू सो मच।